कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
शिव पिता का गायन किया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे पहले से पहला उसका गुण है सत्य। सत्य हमेशा अविनाशी होता है, इसीलिए उसी अविनाशी पिता की ये गायन है कि वो सत्य भी है और सुंदर भी है। सुंदर का अर्थ तो हम सब समझते हैं, वो कभी शाम बनता ही नहीं है, वो सदैव सुंदर ही सुंदर। हम आत्माएं पुनर्जन्म के चक्कर में आकर के सुंदर से शाम बन जाती है और फिर परमात्मा पिता आकर के हमें वापस शाम से सुंदर बनाता है। ये बड़ा वंडर है इस ड्रामा में। हमारा जो शिव साजन है वो सदैव सुंदर है, परंतु जो जब वो इस सृष्टि पर आता है सजनियों से मिलने, आत्माओं से, तब उसको सब सजनियां शाम मिलती है। नहीं तो वैसा लौकिक में हम लोग देखते हैं, कोई कितना भी काला होगा पुरुष वो बोलेगा हमारे को सजनी तो गोरी चाहिए। हाँ, सजनी काली नहीं पसंद करते हैं, खुद भले काला हो में, परंतु हमारा गोरा साजन हम सब काली सजनियों को पसंद कर लेता है कि तुम मेरी सजनिया मुझे अति प्रिय हो, क्योंकि सारे कल्प से तुम बिछड़ी हुई। तो बाबा ये सत्य है, इसीलिए बाबा आकर के सत्य ज्ञान दे करके सत्ययुग की स्थापना करता है। वो खुद भी सत्य है तो ज्ञान भी सत्य देता है। आधा कल्प से लेकर के जिस दुनिया का गायन करते थे, झूठी माया झूठा, झूठी काया झूठा सब संसार, तो इस संसार से, संसार के लोगों से झूठी बातें सुन सुन के हम भी सब झूठे हो गए थे, देहाभिमानी बन गए थे। झूठे की कभी गारंटी नहीं दी जाती है। आप देखो, दुकान में माल लेने के लिए जाओ, जो असली माल होता है उसकी गारंटी होती है। बोलेंगे ये मशीन आए, एक बरस चलेगी, पांच बरस चलेगी, दस बरस चलेगी, गारंटी देंगे। पर जो झूठी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं। इस देह की कितनी गारंटी है बताओ? है किसी के पास गारंटी लेटर? हाँ, कितना समय ये चलना है, कोई गारंटी लेटर है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये झूठा है। तो हम सच्चे बाबा के बच्चे इसे झूठी दुनिया में, झूठी दुनिया में आकर के झूठ को सच मान के बैठे हुए थे। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है हम बच्चों को वापस सत्य बताने के लिए, सत्य ज्ञान दे करके तीसरा नेत्र खोलने के लिए। तो सत्यता है कि आखिर सत्य किसको कहा जाए? परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अविनाशी है। सत्य का दो अर्थ होता है। एक सत्य अविनाशी को कहा जाता, दूसरा सत्य सत अर्थात पवित्रता, पवित्रता को कहा जाता है। वो पवित्रता का सागर है। हम बच्चों को भी आकर के वो पवित्र बनाता है। परमात्मा को हमेशा सत्य ही प्रिय है, क्योंकि वो खुद सत्य है। वो कभी झूठ बोलता नहीं है, झूठ खाता नहीं है, झूठ कर्म करता नहीं है, क्योंकि वो अभोगता है। करण करावन हार स्वामी है। तो अभी जो सत्य बाप है हमारा, उसको हमारी सच्चाई अच्छी लगती है। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है अपने ऊपर, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल को सच्चा रखो, आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। सच्चाई इतनी श्रेष्ठ है जो भगवान भी फिदा हो जाता है। पर इतनी इजी नहीं है उस सच्चाई को धारण करना, इसीलिए बहुत कम लोग उस सच्चाई को धारण करते। सच्चाई उसको कहा जाता है जिनकी मनसा वाचा और कर्मणा सत्य को हमेशा सत्यता के साथ, सच्चाई और सफाई, ये दो अक्षर साथ में यूज किए जाते हैं। वास्तव में सत्यता ये पवित्रता है, सत्यता ये अविनाशी है। तो हम अभी सुन रहे थे कि जो मनसा वाचा और कर्मणा इन तीनों में समान है, उसको सत्य कहा जाता है। ऐसा नहीं मन के अंदर और कुछ हो और वाणी से हम और कुछ सुनावे और कर्म में तीसरा ही कुछ करे, वो सत्यता नहीं। जो हमारे को संकल्प आते हैं, वाणी से जो चलता है और जो कर्म में आता है, इसमें समानता होनी चाहिए। संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु वाणी में सत्यता नहीं, वाणी अलग चलती है। कभी कभी कोई वाणी के द्वारा बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ज्ञान देता है, परंतु अगर उसके कर्मों में श्रेष्ठता नहीं है तो सत्यता नहीं। इसीलिए मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में भी सत्यता की आवश्यकता है। मन की सत्यता का अर्थ है सदैव शुभ संकल्प करना, पॉजिटिव संकल्प करना, कल्याणकारी संकल्प करना, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये मनसा की सत्यता है। सदैव मनमना भो होके रहना, सर्व संबंध हमारे एक बाबा के साथ है, इसको प्रैक्टिकल में करके बताना, सिवाय बाबा की और किसी की भी याद नहीं आवे, उसको कहेंगे मन की स्वच्छता, मन की सत्यता। परंतु मन की सत्यता तभी आ सकती है जब मन को साफ रखते। इसीलिए आपको कहा कि सच्चाई के साथ साथ सफाई अक्षर यूज किया जाता है, मन की हमेशा सफाई करने की आवश्यकता है। जैसा हम घर की सफाई करते, कपड़े की सफाई करते, तन की सफाई करते, वैसे मन की सफाई करने की जरूरत। मन की सफाई कैसे की जावे, क्योंकि आज समझो मेरे हाथ में चाकू है, हम उस चाकू से मिर्ची काट रहे हैं, और थोड़े समय के बाद अगर कोई आता है घर में तो उसी चाकू से हम अगर उसको एप्पल काट के देते हैं तो वो खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, उसमें उसका तीखापन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मिर्ची काटने के बाद चाकू को साबुन से धुलाई कर डाल। तो वैसा ही मन को साफ रखने के लिए, अगर मन में कोई ऐसा वैसा संकल्प आता है, बाय चांस अगर संकल्प उठता है, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, तो सीधा बाबा के कमरे में जाके मन को साफ कर देना चाहिए बाबा की याद से। जब तक हम उसको याद से साफ नहीं करेंगे, उसके अंदर जो कड़वापन है, बुराई है, वो नहीं जाएगी। और फिर कोई भी सामने आएगा तो वही जो अंदर मन मैला हुआ पड़ा है उसका असर उसके ऊपर होगा, वाणी हमारी वैसी चलेगी। तो इसीलिए हमें मन के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी थोड़ा भी ऐसा वैसा संकल्प चले तो बाबा के सामने बैठ करके बाबा की याद में उसको साफ करने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में लोग गीत गाते थे कि थोड़ा सा समय निकाल करके अपने मन मंदिर में झाड़ू तो लगाया करो, नहीं तो कैसा साफ होगा आपका मन मंदिर। तो झाड़ू कौन सा लगाएंगे, वो कोई स्थूल झाड़ू नहीं लगाया जाता है, ये ज्ञान का झाड़ू, कि कोई भी कीचड़ अगर किसी की भी बुराई हमारे मन के ऊपर आ गई, उसका इफेक्ट हो गया, तो आत्मा तुरंत डिफेक्टिव हो जाती, उसके ऊपर दाग लग जाता है। जैसा हीरा कितना भी कीमती होवे, अगर उसके ऊपर छोटा सा भी दाग होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो उसी प्रकार हम जो आत्मा रूपी हीरे हैं, अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट होता है, परिस्थिति का, व्यक्ति का, वातावरण का, हम आत्मा रूपी जो हीरे है वो डिफेक्टिव हो जाते। बाबा ने हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाया है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होवे, परिस्थिति का हमारे मन के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर इफेक्ट होगा तो जरूर वाणी में भी आएगा और कर्म में भी आएगा। क्यों होता है इफेक्ट, कारण क्या है, स्थिति हमारी क्यों खराब हो जाती है मन के ऊपर इफेक्ट करके, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सर्व शक्तियां और संगम का समय दिया है अपनी स्वस्थिति को ठीक करने के लिए। परंतु चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, जो शक्तियां, जो समय, जो ज्ञान हमें स्वस्थिति के ऊपर लगा के उसको साफ करना है, स्ट्रांग बनाना है, उसके बदले अगर कोई भी परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति परीक्षा बनकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो हम वो शक्तियां, वो समय खुद के ऊपर न लगाते हुए हम उसके ऊपर लगाते, उलझ जाते हैं उससे, उसमें बिजी हो जाते हैं, सामने वालों को ठीक करने में लग जाते हैं। तो जब हमने अपनी शक्तियां, अपने स्वास्थ्य, अपना समय परिस्थितियों में लगा दिया तो हम शक्तिहीन बन जाते, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब शक्ति क्षीण होती है तो जैसा हम देखते हैं किसी का कमजोर तन है तो वातावरण चेंज होता है तो तुरंत उसको असर हो जाता है, किसी को सर्दी हो जाएगा, किसी को बुखार हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाता है। और अगर स्ट्रांग है तो वो उसको झेल लेता है। तो वैसा ही हमारे ऊपर जब असर होता है तो आत्मा और भी कमजोर हो जाती है, कमजोर है इसीलिए असर हुआ, और फिर असर हुआ तो ज्यादा कमजोर हो गई, शक्तिहीन बन गई, तो विजय प्राप्त करने की बात ही नहीं आती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदैव अपनी मनसा को बचा करके रखो, मन के ऊपर जिन जिन बातों का असर होता है उससे मन को बचाओ। जैसा देखो हमें सर्दी का असर होता है, बाहर सर्दी होगी तो हम अपने को बचाते हैं, बाहर निकलेंगे तो गर्म कपड़ा पहनेंगे, बरसात का असर होता है तो छतरी उठाएंगे ना हाथ, अपना बचाव करने की आवश्यकता होती है। तो वैसा ही मन के ऊपर जिन बातों का असर होता है उससे मन को बचा के रखना, अर्थात ही मन को पवित्र बनाना, मन को सच्चा बनाना। मन के ऊपर सबसे बड़ा असर होता है अन्न का, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बन जाता है, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सात्विक भोजन करना सिखाया। सात्विक भोजन खाओ परंतु बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोजन खाओ तो तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा होगा। क्योंकि आपको तो सबको मालूम है कि जो हम भोजन खाते हैं उसी का ब्लड बनता है और वो ब्लड सारे शरीर में घूमता है, उसी शक्ति से हम चलते हैं। अगर ब्लड के अंदर ही डिफेक्ट आ जाएगा तो नेचुरली हमारी कर्म इंद्रियां भी डिफेक्टिव हो जाएगी। मन के ऊपर संग का बहुत असर होता है, कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, इसीलिए हम ब्राह्मणों को मन को निरोगी बनाने के लिए, मन को सत्य बनाने के लिए संग के रंग से बचने की आवश्यकता। आप कहेंगे हम शूद्रों का संग तो करते नहीं, अच्छा ही नहीं लगता ब्राह्मणों को, हमारा संग तो ब्राह्मणों के साथ ही है। परंतु ब्राह्मणों के साथ भी कौन से ब्राह्मणों के साथ है ये देखने की आवश्यकता, क्योंकि हर एक की स्थिति अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी। जब हम देखते हैं, बाबा हमेशा कहता है बच्चे, सी फादर फॉलो फादर, बाप को देखो और बाप को फॉलो करो, और किसी को देखो ही नहीं जो उनको फॉलो करना पड़े तुम। तो अगर हम कमजोर आत्माओं के संग में, क्योंकि ब्राह्मणों में भी कमजोर हैं, कमजोर आत्माओं के संग में आते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत हमारे मन के ऊपर होता है। कितना भी ना बोलो, आपको जरूर अंदर में सोच चलेगा कि अरे ये इतने वर्षों से चल रहा है, इसमें इतना परिवर्तन नहीं तो मेरे में क्या आएगा। तो इस संग ने हमको क्या बना दिया, अलर्ट नहीं किया परंतु अलबेला बना दी। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बच्चे कहीं भी देखना नहीं है, क्योंकि तुम्हें फादर को फॉलो करना है, बाप को फॉलो करना। उसके बाद हम देखते हैं कि मन जो है, मन के अंदर अगर कचरा इकट्ठा करते हैं, पर चिंतन पर दर्शन का कचरा, मन मैला होता जाता है। बाबा ने हमें हंस बनाया है, मोती चुगने वाला बनाया है, कंकर को फेंकने की शिक्षा दी हुई। अगर हमारी गुणग्राही दृष्टि नहीं तो हमारी स्थिति जो है वो एक रस नहीं रह सकती। हम हर्षित मुख नहीं रह सकते हैं। अगर हमको हर्षित मुख बनना है हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही देवी देवता बनना, देवी देवता है तो सदैव हर्षित, हमें हर्षित मुख बनना है, उसके लिए हंस मुखी बनने की जरूरत, नीर क्षीर को अलग करने की दरकार, रॉन्ग और राइट को समझने की दरकार है, गुण अवगुण को समझ के गुणों को ग्रहण करने की दरकार। तो जितना जितना हम हंस मुखी बनते जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर हम गुणों को ग्रहण करते जाते हैं। इसीलिए हमें विशेष इन बातों का ध्यान देना है, मनसा को सदैव हमारे को साफ रखना है। बाबा कहता है माइंड को क्लीन रखो और बुद्धि को क्लियर रखो, क्योंकि हमारी जो भी प्राप्तियां हैं वो बुद्धि योग बल से होती है। अगर बुद्धि में बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकेगी। आप देखो कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट बहुत कमजोर है, डॉक्टर लोग उसको ताकत का इंजेक्शन नहीं देते, कहते अगर इसको ताकत का इंजेक्शन देगा तो ये रिएक्ट करेगा और इसका नुकसान हो जाएगा। तो वैसा ही अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर कोई शक्ति भर नहीं सकता है, हमें खुद को ध्यान देने की जरूरत है, शक्तिशाली बन के रहने की दरकार। तो हमारी मनसा को हमेशा सदैव इन बातों से सेफ रखना है। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, परचिंतन का कीचड़ा नहीं डालना। किसी किसी को आदत होती है ना, हमारे पास बॉम्बे में आते भिखारी लोग थैला उठा करके गाड़ी लेके, अरे कोई भंगार का माल है जूना पुराना दो, हाँ सारी दुनिया का इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो ये भी जिनको परचिंतन की आदत है ना, वो यही करते हैं, तुम्हारे पास कुछ है दो हमारे, इससे बताओ क्या होगा, ये सच्चाई हुई, ये सफाई हुई, मन साफ हुआ या मन मैला हो गया। मैला मन कभी ईश्वर को नहीं याद कर सकता, मैले मन में कभी ताकत नहीं होती उड़ने की, वो पहुंचेगा ही नहीं परम धाम तक, ऊपर उड़ेगा नीचे गिरेगा। इसीलिए अपने मन को कभी भी मैला नहीं करना, सदैव स्वच्छ रखना। जितना जितना माइंड स्वच्छ होता जाता है उतनी उतनी हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आती जाती, क्योंकि साफ पानी होगा उसमें एक सुई भी गिरेगी ना आपको दिखाई पड़ेगी कि इसमें सुई है, और मैला पानी होगा तो बड़ा मोटा पत्थर होगा तो भी दिखाई नहीं पड़े। तो वैसा ही अगर हमारा मन साफ है, सच्चा है, तो उसमें थोड़ा भी जरा भी अगर कुछ दाग लगेगा तो तुरंत हमें दिखाई पड़ेगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने अभी तक पाप तुम्हारे भस्म हुई है और कितने तुमने पुण्य जमा किए। लगातार जब हम अपने को देखते रहेंगे तो हमारे अंदर का जो भी डिफेक्ट होगा वो धीरे धीरे निकलते निकलते हम एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। इसीलिए मनमना भाव के रहना है तो पुरानी बातें, पराई बातें, इनको कभी भी वर्णन नहीं करना है, ये कभी सुनना नहीं है। बाबा ने पवित्रता के लिए हम बच्चों को बताया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। अगर हम इन बातों की परहेज रखते हैं, मन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, मन एकदम स्वच्छ हो जाता है और साहब हमारे ऊपर राजी हो जाता है। उसके बाद हम देखते वाणी की सत्यता, वाणी की पवित्रता। सत्यता और पवित्रता एक ही बात है। हमारी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, वाणी हमारी हमेशा सत्य होनी चाहिए, कभी भी वाणी में हेर फेर नहीं होना चाहिए। किसी किसी को आदत होती है झूठ बोलने की, कोई कारण नहीं होगा ऐसा ही झूठ बोलता रहेगा, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। नहीं नहीं मैंने ऐसा समझा कुछ नहीं, पर उसकी आदत। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रखता है कि ये झूठा आदमी, जाने दो इसको, वो झूठ उसके अंदर घर करके बैठा हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है ये मैंने तुमको मुख दिया है, किसके लिए दिया है, ये शंख है, इस शंख के द्वारा तुम शंख ध्वनि करो कि परमात्मा इस सृष्टि के ऊपर आ गया है, इसके बगैर इसके द्वारा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। बहुत बोला हमने, जन्म जन्मांतर बोलते आए, थक गए बोल बोल के, अभी तुम शंख ध्वनि करके औरों को बाप का संदेश देने का काम करो। बाबा ने कहा ना ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु हम क्या समझते, सामने वाला कम समझता है, हम ज्यादा समझते, इसलिए उसको ज्यादा बोल बोल के बताते, बोलने की जरूरत नहीं, आप कम बोल, जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी शक्तियां आपके पास जमा होगी, शारीरिक शक्ति भी जमा होगी, आत्मा का बल भी जमा होगा, वाणी में पावर आ जाएगी। दूसरे शब्दों में बाबा कहता है वाणी में जोर भर जाएगा, जोर माने धार, जैसा तलवार को धार होती है तो क्या करती है, सामने वाले को छेद देती है, खलास करती है। तो तुम्हारी वाणी की जो धार है वो मौन के अंदर है, चुप रहने में। तुम जितना जितना चुप रहेगी तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाएगी और तुम्हारी वाणी सुनने के लिए लोग आतुर रहेंगे कि आप कुछ तो बोलो, दो वचन तो बोलो, भला आशीर्वाद तो दो। और तुम सारा दिन बोलते रहेंगे तो कौन बोलेगा, बोलो। दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक होते हैं बहुत बोलने वाले, दूसरे होते हैं कम बोलने वाले। लोग किसको पसंद करते हैं, कम बोलने वाले को पसंद करेंगे, ज्यादा बोलने वाले को पसंद नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ना हंसी खुदी करो, वो भी मर्यादा से करो ना, वो भी मर्यादा से करो, ईश्वरीय मर्यादा से, उसमें विकारों की बांस नहीं होनी चाहिए। आप अपने मुख के राजा हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, बोलना नहीं था मेरे को पर मेरे मुख से निकल, अरे मेरा मुख है फिर कैसा निकला, क्योंकि कोई भी कर्म मनसा में चलने के बिगैर वाचा और कर्म में नहीं आ सकता। पहले तो मनसा में चला हुआ ना, तो मनसा में उसको फटकारो, वाचा तक आने क्यों देती, उसके ऊपर पहरा देने की जरूरत है। मन चंचल है बहुत, तो पहरा स्ट्रांग चाहिए जरूर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाणी हमारी जो है वो मीठी वाणी होनी चाहिए, कल्याणकारी वाणी होनी चाहिए, तभी हम औरों का कल्याण कर सकते हैं। निर्माणता की वाणी होनी चाहिए, तो क्या होगा, भक्ति मार्ग में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, मौन धारण करते हैं, वर्षों तक मौन धारण करते हैं, उसकी रिजल्ट क्या होती है, उनके वचनों में सत्यता आ जाती है। वो जो भी बोलेंगे उनके शिष्य कहेंगे सत्वचन महाराज, हम लोग समझते हो झूठ बोल रहे पर लोग थोड़े समझते हो झूठ बोल रहे, उनमें इतनी ताकत आ जाती। तो ज्ञान जब हम देते हैं वो भी लोगों को सत्य फील हो गए, उसके लिए जोर तो चाहिए, नहीं तो क्या काम का। बाबा कहता था नहीं तो क्या, तलवार है तुम्हारे पास, ज्ञान की तलवार है, परंतु उस तलवार में जोर नहीं है योग का, तो लकड़ी का काम करती है ना कि तलवार का काम करती, कुछ फायदा नहीं होता उसको। इसीलिए अपनी वाणी को हमेशा विराम देना सीख जाओ। हम लोग कामा बहुत लगाते हैं। मम्मा हमेशा कहती थी देखो तुम कागज के ऊपर लिखते हो, सबसे इजी क्या होता है, फुल स्टॉप लगाना, परंतु जब वाणी और कर्म में आते हो तो तुम कामा बहुत लगाते हो, ऐसा हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये, कामा लगाते जाएंगे, बात को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन मार्क करते जाएंगे, अरे क्वेश्चन मार्क है ही टेढ़ा, तुम्हारे को टेढ़ा ही बनाएगा, सीधा कहां से बनाएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, खुद के लिए, औरों के लिए, परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए क्वेश्चन, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या है फालतू, आजकल इतनी ठंडी पड़ती, मतलब नहीं कोई पढ़ने, अब ये कोई बात है। देखो कैसे संकल्प उल्टे सुलटे चला के हम अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, फालतू बोल करके हम अपनी वाणी को वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी वाणी में इतनी सत्यता हो, तुम्हारे बोल आशीर्वाद के बोलो, वरदान के बोलो, क्योंकि तुम महान आत्माएं हैं, महान आत्माएं, बाबा कहते हैं तुम मास्टर सतगुरु है, सतगुरु हमेशा वरदान देता है, तुम वरदान दो औरों, जियदान दे औरों को, बाकी उल्टा बोलना होवे तो नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, चुप करके बैठ जाओ, अगर नहीं कंट्रोल है ना, कोई कोई कहते हैं हमारे जबान के ऊपर कंट्रोल ही नहीं, हम क्या करेंगे, नहीं है तो शांति से बैठ जाओ, बांध डालो घोड़े को, मन रूपी घोड़े को किले से बांध डालो ज्ञान के, उसको बोल बैठा रहे चुप करके, बोलना नहीं बिल्कुल, बैठ जाएगा बेचारा, अच्छा है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो जितना जितना हमारी वाणी, हमारे संकल्प जो होवे, वाणी भी हमारी वैसी ही चले, और कर्म की जो सत्यता पवित्रता है वो है कर्म में पवित्रता धारण करने के लिए, सत्यता धारण करने के लिए दो गुणों की आवश्यकता, एक तो निर्माणता और दूसरी है संतुष्टता। इन दोनों बातों को जब ही धारण कर लेते हैं, निर्माण, बाबा देखो कितना निर्माण है, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट, तीन लोगों का नाथ है, त्रिलोकी नाथ है ना, परंतु अपने को सर्वंट कहलाता है बच्चों, कितनी निर्माणता है उसके अंदर, उसके अंदर इतनी निर्माणता, इसीलिए हम सब उसके आगे झुकते हैं। निर्माणता से झुकते नहीं परंतु झुकना सिखाते औरों को। कोई कोई समझते हम निर्माण बन जाएंगे तो ये समझेंगे कमजोर है इसीलिए इतना झुकते हैं, नहीं, निर्माणता ये सारी दुनिया को झुकना सिखाती। आज हम सभी को बाबा के लिए कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट आता है अंदर से, अरे बाबा इतना बड़ा बाबा होके कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा सर्वेंट है तो हम मालिक है, हम भी तो सर्वेंट ही हैं। तो ऐसी जब निर्माणता हम अपने कर्म में धारण कर लेते हैं, बोलने से क्या होता है, और उसके साथ साथ संतुष्टता, कैसी भी परिस्थिति होवे हमें संतुष्ट रहना। परिस्थिति आती है और चली जाती है, परिस्थिति कभी बैठती नहीं है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया ये परिस्थितियां सब साइड सीन है, इनको देख के मनोरंजन करो, मन को रंज नहीं करो, दुखी नहीं करो, परंतु मनोरंजन करो कि वाह ये परिस्थिति आई इसने मुझे सिखाया, ये परिस्थिति आई इसने ये गुण मेरे को देके गई। आप थोड़ा विचार करेंगे ना इसके ऊपर, जो भी बात होती है आपको उससे क्या प्राप्ति हुई, आप कहेंगे हमको तो नुकसान ही होता, नुकसान नहीं होता। आपको देखने में नुकसान लगता है, सामने वाले ने क्रोध किया फिर आपने क्या किया, आप चुप रह गए तो आप कहते हैं अरे मैं चुप रहूंगा तो समझेगा मैं कमजोर हूं। अरे जाके समझने दो, बाबा क्या समझता है वो तो देखो। बाबा खुश होता है हम क्रोध करते हैं तो, हम लोभ करते हैं तो बाबा खुश होता है, जिसमें बाबा खुश नहीं उसमें हम खुश नहीं। तो हमें बाबा की पसंदी का ध्यान रखना चाहिए ना, हम मनुष्य आत्माओं की पसंदी का ध्यान रखें। हम इसीलिए बोलते हो एक आवाज चढ़ाते हैं हम दो आवाज चढ़ाते, क्यों? उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं कमजोर हूं, मैं भी तो शक्तिशाली हूं, परंतु शक्ति ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। यहां अपनी शक्ति को जमा करो, वेस्ट मत करो। तो हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो, जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो होगा और उससे भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे से अच्छा है, कभी भी इसको खराब नहीं समझो। हमारा कभी नुकसान नहीं हो सकता है, ये आप 101% गारंटी अपने पास लिख के रखो। हमारा क्यों नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसका क्रिएटर और डायरेक्टर मेरा बाप है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ड्रामा बनावे और अपने बच्चों का नुकसान उसमें नूंद करे, कौन होगा ऐसा? तो हमारा कभी भी किसी भी बात में नुकसान नहीं है, जो होता है उसमें फायदा ही फायदा। अगर इस बात को याद रखेंगे ना, तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप उसमें से गुण उठाएंगे, आप उसको बहादुर बन करके उसका सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र रखो, अर्थात एक समान श्रेष्ठ बनाओ। जितनी जितनी तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनेगी, श्रेष्ठ बनेंगे, उतना उतना तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक बन सके, और बाबा के दिल तख्त पर वही बैठ सकते हैं जो पवित्रता की धारणा करते। पवित्रता का कितना भी बड़ा अर्थ है बाबा ने हम बच्चों को बताया। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं, पवित्रता का मतलब है ब्रह्मा बाप की पालना। सदैव ब्रह्मा बाप की पालना को सामने रखो, क्योंकि संगम युग ये ईश्वरीय पालना लेने का युग है। बाबा हमारी कितनी पालना करता है, कितने बरस हो गए, रोज हमको समझाता है, रोज समझाता है, तो उस पालना का रिटर्न कभी करेंगे? ये संगम युग पर ही हमें उसका रिटर्न करना है। बाबा कहता है मेरे को तुम क्या रिटर्न करेंगे, तुम जीवन में धारण कर लो यही हो गया रिटर्न करना, क्योंकि अभी हमारी रिटर्न जर्नी है ना। तो जब रिटर्न जर्नी है, हमें वापस जाना है, तो उसके लिए करते हैं नहीं कहीं अकाउंट वाले करते हैं, रिटर्न फाइल भरनी पड़ती है, अगर नहीं भरेंगे तो उधर फिर डिग्री लगेगी तुम्हारे ऊपर, धर्मराजपुरी में छोड़ेगा थोड़े ही। तभी बाबा कहते हैं बच्चे अपने कर्मों के ऊपर हमेशा ध्यान दो, और कर्मों के ऊपर ध्यान देने के लिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनको पवित्र बनाने के लिए, उनको सत्य बनाने के लिए एक स्लोगन याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करें, और कुछ भी याद नहीं करो तुम। अगर तुमको ये सदैव याद रहेगा ना कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, तो हमारा कर्मों के ऊपर सदैव अटेंशन रहेगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं चल रही हूँ, मेरे पीछे बहुत लंबी क्यू चल रही है इस ईश्वरीय मार्ग पर। तो अगर हमारा पैर फिसलेगा तो उनका भी फिसलेगा, सभी का। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ब्राह्मण के ऊपर है, जो जितना जितना पुराना होता जाता है उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती, उसको अपने ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता। तो मनसा वाचा और कर्मणा को पवित्र बनाओ, स्वच्छ बनाओ, बाहर के वातावरण का उसके ऊपर असर नहीं हुए ऐसा स्ट्रांग बनाओ, ईश्वरीय याद के द्वारा इतना पावरफुल बनाओ जो उसको भी कहना पड़े वाह ये तो सच्चे योगी, इन्होंने अपनी मनसा वाचा को एकदम पावरफुल बना लिया है, ये सच्चे सच्चे योगी है। क्योंकि हम सत्य बाप के बच्चे हैं, इसीलिए हम झूठे नहीं, हम सच्चे योगी। तो जब हम बाबा को ये करके बताते तभी हम बाबा के दिल के ऊपर चढ़ते, वो पवित्रता का सागर है। अगर हमारे अंदर 1% भी झूठ होगा हम उसके दिल पर नहीं चढ़ सकते। जो हमारे दिल में है, जो मन में है, वो वाणी में होना चाहिए, जो वाणी में है वो कर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए हम सिर्फ खुद नहीं चल रहे हैं, परंतु हमारे साथ बहुत चल रहे हैं, उनकी जवाबदारी भी हमारे ऊपर है। इस बात को अगर ध्यान में रख करके पीछे चलते हैं तो बहुत अलर्ट रहते हैं, बड़ा अटेंशन अपने ऊपर रहता है। देखो वैसे भी लौकिक जीवन आपने पास किया है, आपको मालूम है जिस समय अकेले होते हैं, बैचलर होते हैं, कोई नहीं होता है आगे पीछे, कितना अलबेला बन के चलते। शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर देखो फिर खुद का फिक्र नहीं रहता है, बच्चों का, घर का फिक्र रहता है, अरे मेरे पीछे तो ये भी है ना, इनका भी मुझे संभाल करना। तो बाबा कहता है तुम भी तो मास्टर प्रजापिता ब्रह्मा और सब ब्रह्मणिया हो, तुम्हारे को सारे विश्व की पालना करनी है। कैसे करेंगे? अपने कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा करें। तो इसीलिए अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन दो, अपनी वाणी के ऊपर अटेंशन दो, अपनी मनसा के ऊपर अटेंशन दो, तो बाबा का दिल तक तो हम बच्चों के लिए ही। बाबा ने हमारा जन्म होते ही हमारे को दिल तक नशीन बना दिया, अपने तखत के ऊपर बिठा दिया, भ्रुकुटी रूपी तखत पर बिठाया, फिर अपने दिल तखत पर बिठाया, फिर भविष्य में ताऊजी तखत पर बिठाएगा, रत्न जड़त तखत पर। परंतु ईश्वर के दिल रूपी तखत ये कितना इम्पोर्टेंस है, कितना बड़ा है, इसके ऊपर जितनों को चाहिए उतने बैठ सकते। तो बैठना हमको है, बाकी उसने जगह बना के दी हुई है हमारे को, परंतु अगर हम घड़ी घड़ी उधर से छलांगे लगाते रहेंगे तो क्या करेंगे? छोटे बच्चों को आदत होती है ना, रस्ते से माँ बाप उनको गोदी में लेके चलते, वो घड़ी घड़ी नीचे उतरते, हमको नीचे नीचे उतर, नीचे उतारेंगे मिट्टी में पैर मैले कर, फिर बोलेंगे अभी हमको उठाओ, सारा समय यही खेल करते हैं। तो यहाँ भी बच्चों को बाबा लेके जा रहा है, पर इनको चैन नहीं आ रहा है, घड़ी घड़ी नीचे छलांग मार, नीचे नहीं उतरना, पैर मैले हो जाएगी तुम्हारे। यहाँ स्थूल पैर की बात नहीं, बुद्धि रूपी पैर की बात, बुद्धि मलिन हो जाएगी। बुद्धि अगर मलिन हो गई, जजमेंट पावर खलास हो जाएगी, परखने की शक्ति खलास हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा बाबा सत्य है, हम भी उसके बच्चे सच्चे हैं। बाबा कहता है कभी भी तुम्हारे को कोई भी आत्मिक बीमारी होवे वो मेरे से छुपाना नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी सर्जन हूं, मैं रूहानी सर्जन हूं। वो जैसे तुम्हारे पास बीमारी है वो बीमारी हू बहू मेरे को सुनाओ, तो बाबा देखेगा इसका क्या उपाय करना, बाबा तुमको मदद करेगा। ऐसा नहीं औरों को मालूम पड़ेगी तो जाके मालूम पड़े पड़ेगी तो क्या होने वाला है, हमारे को तो हमारी बीमारी को मिटाना है ना, छोड़ना है ना। तो इसीलिए अपना जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को हमेशा मजबूत रखो, पक्का रखो, और ये ध्यान में रखो कि हमारे को बाबा का नाम बाला करना है, हमको बाप समान बनना है, हमें बाप को ही देखना है, बाप के बिगर हमको किसी को भी नहीं देखना, क्योंकि सब आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो हमारे को इसीलिए पुरुषार्थ करके वन नंबर लेना है। वन डिवीजन में तो हम आ ही सकते, भले वन नंबर नहीं आवे, परंतु वन डिवीजन जरूर हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अटेंशन रूपी पहरे को एकदम चुस्त बनाओ। ऐसा नहीं थोड़ा समय ध्यान दिया, थोड़ा समय उसको छूट छोड़ दिया, उसका तो मजा हो जाता है, इधर भाग उधर भाग उधर भाग उधर भाग, फिर जख्मी होके तुम्हारे पास आएगा, जाएगा कहाँ, उसका स्थान तो यही। इसीलिए मन को कभी भी खाली नहीं रखना, खाली मन शैतान का घर होता है, उल्टे विचार करने के लिए बाध्य कर डालता। तो बाबा ने हमें सब युक्तियां बताई, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि बाबा ने हमें ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, बाबा ने सब बताया है, परंतु हमने उसको अपनाया नहीं है। किन्होंने नंबर वार अपनाया है, किन्होंने अपनाया ही नहीं है, कोई अभी तक सोच ही रहे हैं अपनावे या नहीं अपनावे। तो जो जैसा जितना करेगा उसको उतना ही मिलने वाला है, ये तो पक्का समझ लो। भक्ति मार्ग में समझते हैं, पति ने दान पुण्य किया तो पत्नी को मिल जाएगा, बाबा कहता है यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, जो करेगा वो ही पाएगा। कोई किसी के लिए मेहनत नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है, हर एक कोई खुद के ऊपर खुद उपकार कर रहे हैं। इसीलिए हमें सदैव खुद को देखना, बाप को देखना और बाप को फॉलो करना, सिर्फ यही हमारा काम है, और हमें कोई काम ही नहीं है। फ्री है, हम सदैव फ्री है। भक्ति मार्ग में कहते थे एक घंटा भी ईश्वर के लिए निकालना, हमारे पास समय नहीं, परंतु हमारे पास तो 24 घंटे भी उसी के ही नहीं है, 24 घंटे उसी के लिए है। अच्छा, इसीलिए सदैव सच्चा रहना। सत्यता की शक्ति बड़ी महान शक्ति है। खुद के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी सत्यता और निर्भयता, ये दोनों शक्तियां चाहिए। अगर सच्चाई से हम अपने को चेक करते हैं और निर्भय होकर के अगर उनको हम परिवर्तित करते हैं, तो हो सकती है परिवर्तित। इसीलिए कभी भी हमको डरना नहीं। कोई कोई खुद की स्वोन्नति में भी डरते हैं, मेरा फलाना संस्कार है ना, ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये बहुत हैरान करता है। अरे तुम डरते क्यों, तुम्हारा है ना, तुम छोड़ो उसको, छोड़ो तो छूटे, पकड़ के भी रखे और बोले कि ये छूटने वाला नहीं, अभी तुम पकड़ के रखेगे तो छोड़ेगा कैसा। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे को खुद बदलना है, हमें इसको निकाल के फेंकना है माया रावण को। किसी से नहीं छूटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तो हमारे आगे बहुत एग्जाम्पल है ना दादियां, कितने गए हैं पूर्वज, कितने हैं हमारे मम्मा है, बाबा है, दादियां हैं, कितने उन्होंने क्या किया। हमें भी वो ही करना है, क्योंकि हम किसके पास आए हैं, विश्व के रचयिता के पास आए हुए, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है उसके पास आए हुए हैं। तो हमें भी उस नशे में रह करके पीछे क्या करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन एक आदर्श बन जाएगा, आईना बन जाएगा। आईने में क्या होता है, खुद का मुंह देखा जाता है ना। बाबा कहता है ये वाला मुंह तो तुमने सदा देखा है, परंतु अभी आंतरिक स्थिति को देखो तो परिवर्तन आ सकता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो इसीलिए सच्चे बाबा के हम सच्चे बच्चे हैं। बाबा सत्य है, पवित्र है, अविनाशी है, तो हम आत्माएं भी तो वैसे ही। तो इन स्मृतियों से हम क्या कर सकते, खुद को परिवर्तित कर सकते हैं और बाबा के दिल रूपी तख्त पर जाकर बैठ सकते हैं। ओम शांति।
जब तुझको।